الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم وإن الله لمع المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اس کلاس میں ہم تسہیل بہشتی زیور سے شیخ کامل کے ساتھ تعلق پڑھ رہے ہیں. کافی ساری تمہید اور ریکیپس وغیرہ ہم پچھلی کلاسز میں کرتے رہے ہیں. تو ابھی جو ہے جو متن ہے یعنی کتاب کی جو عبارت ہے اسی کو آگے پڑھتے ہیں. موضوع اس میں یہ چل رہا ہے کہ اگر بے دین پیر سے تعلق ہو جائے یعنی کسی ایسے شیخ سے انسان بیعت کر لے، اصلاحی تعلق قائم کر لے جس کا کہ دین صحیح نہیں، جس کا کہ طریقہ ٹھیک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے کے مطابق نہیں ہے، تو کیا کرے پھر؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر غلطی سے کسی بے دین پیر سے تعلق ہو جائے، یا پہلے وہ صالح تھا بعد میں بگڑ گیا، تو اس سے تعلق ختم کر کے کسی متبع شریعت بزرگ سے متعلق ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی تعلق ختم بھی کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ جڑ گئے تو اب جو ہے نا وہ مر کے ہی وہاں سے نکلیں گے. ٹھیک ہے، یہ کوئی ویسے تو میاں بیوی کے تعلق میں بھی جو ہے وہ طلاق کا راستہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ بس شادی ہو گئی تو اب جو ہے وہ قبر میں ہی نکلیں گے، اس گھر سے نکل کے قبر میں ہی جائیں گے. ٹھیک ہے، وہاں پر بھی ایک ایگزٹ کلاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اگرچہ کہ اس کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ یعنی ناپسندیدہ بھی قرار دیا اور بالکل آخری ریزورٹ ہوتا ہے وہ، آخری ریزورٹ. ٹھیک ہے، تو پیر کے ساتھ بھی جو تعلق ہے نا یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور اگر کچھ تعلق وغیرہ ختم کر دیا تو جو ہے وہ آسمان سے کوئی بجلی آئے گی اور وہ جلا کے بھسم کر دے گی، ایسا معاملہ بھی نہیں ہے. یعنی وہ ایکسٹریم بھی نہیں ہے اور دوسری ایکسٹریم بھی نہیں ہے کہ بس کچھ بات سمجھ میں نہ آئی اور کوئی چیز خراب لگ رہی ہے تو بس فوراً تعلق توڑ دیا، جیسے کہ آج کل میاں بیوی کے تعلق میں جو ہے وہ فوراً طلاق ہو گئی، فوراً جو ہے وہ خلع لے لیا، فوراً جو ہے وہ جا کر کے اپنے گھر پہ بیٹھ گئی. ٹھیک ہے، تو وہ ایک ایکسٹریم ہے، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ تصور ہی کوئی نہیں ختم کرنے کا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ عطا فرمائے، ایکسٹریمس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم بڑی بڑی آسانی کے ساتھ ہم ڈولتے رہتے ہیں ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم، دوسری ایکسٹریم سے پہلی ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم. ٹھیک ہے، تو ہم ایکسٹریمس کے درمیان ڈولتے رہتے ہیں، ایکسٹریمس کے درمیان نہیں رہتے. درمیان کا راستہ اعتدال کا راستہ ہے، ہم اعتدال پر نہیں رہتے بلکہ ہم یا تو اس پہ رہتے ہیں یا اس پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مشائخ جو ہے وہ ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، ایکسٹریم میں نہ رہا کرو. تو کہتے ہیں کہ جی اچھا، دوسرا یہ کہ کسی متبع شریعت بزرگ سے متعلق ہو جائے، یعنی کیا مطلب کہ آزاد نہ رہے، بغیر پیر کے نہ رہے. ٹھیک ہے، ایک سے توڑا ہے تو پھر دوسرے سے تعلق جوڑ دے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ امید ہے کہ سب کو یاد ہی ہوگا کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے، تو شیطان کو اپنا پیر بنا کر کے زندگی مت گزارے بلکہ کسی اور متبع شریعت بزرگ سے متعلق ہو جائے. اچھا، کسی نے سوال لکھا ہے کہ اگر خاندان میں کوئی بے دین پیر سے جڑا ہوا ہو تو ہمیں اس کے ساتھ اپنے معاملات کیسے رکھنے چاہیے؟ اگر خاندان میں کوئی بے دین پیر سے جڑا ہوا ہو تو ہمیں اس کے ساتھ اپنے معاملات کیسے رکھنے چاہیے؟ اس طریقے سے خاندان میں بے دین پیر سے جڑے ہوئے سے تعلقات جو ہیں وہ آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ یعنی اتنے برے اگر معاملات اس کے شروع ہو گئے ہیں کہ تعلق توڑ دینا ہے تو پھر تعلق توڑ دینا پڑے گا، لیکن اگر ایسے اس درجے تک معاملات نہیں پہنچے तो फिर जो है वो बस निभाना है, चलाना है, क्योंकि खानदान का मामला है, राइट। खूनी खून का रिश्ता है, या जो है वो बहुत ही करीबी रिश्तेदारी है, तो फिर मामला चलाना है। उसके अंदर जो है फिर एहतियात वगैरह का पहलू देखना पड़ता है, एहतियात कैसे करें उनके साथ, ठीक है ना। अब ये देख लेना कि भाई बेदीन पीर के साथ ताल्लुक के बारे में तो हमें माशाल्लाह फिक्र हुई हुई है ना, ठीक है, लेकिन जिनका कोई पीर नहीं होता, अब क्या हमें अपने बड़ों की इस बात के ऊपर इतना एतमाद है क्या वाकई हम इसको यानी अहमियत देते हैं इस जुमले को, जो अभी इस आजिज ने भी आपके सामने रिपीट किया है कि जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है, ठीक है। तो अब जो है वो शैतान पीर वाले कितने कितने लोग हैं हमारे खानदान के अंदर, ये बता दें, ठीक है ना। शैतान पीर साहब, तो उसके साथ जुड़े हुए कितने लोग हैं हमारे खानदान के अंदर, तो हम क्या करते हैं उनके साथ, मामला कैसे रखते हैं उनके साथ, बस यही जवाब है आपके सवाल का भी, ठीक है ना। पीर चाहे शैतान हो यानी जिन इबलीस, राइट, या जो है वो कोई हजरत इंसान हो जो के बिदतों में खराफात में या जो है वो खिलाफ शरीयत कामों के अंदर लगा हुआ है, बहरहाल है तो असल में है तो वो भी शैतान ही, इंसानी शैतान, क्योंकि जो पीर बेदीन पीर है वो दूसरों को भी खराब कर रहा है, वो इतना ज्यादा बुराई में आगे बढ़ा हुआ होता है कि वो सिर्फ अकेला अपनी बुराई नहीं कर रहा होता बल्कि दूसरों को भी बुराई के ऊपर लगा रहा होता है ना, अपने मुरीदों को भी बुराई पे लगा रहा होता है। तो शैतान की क्या तारीफ समझाइए, कितनी बार समझाइए कि शैतान किसको कहते हैं, शैतान उसको कहते हैं जो कि बगावत में इतना आगे बढ़ जाता है कि वो दूसरों को भी बगावत के ऊपर मायल करता है, दूसरों को भी गुनाह के ऊपर मायल करता है। तो बेदीन पीर भी तो यही काम कर रहा होता है, ठीक है। तो जिस तरह आज खानदान का हर फर्द जो है वो पीरे शैतान का मुरीद बना हुआ है, उसी तरीके से अगर कोई पीरे बेदीन का भी मुरीद बन गया तो भाई उसके साथ भी वही मामला करना है, ठीक है ना। जिस तरह दूसरों से हम ताल्लुक नहीं तोड़ लेते, छट करके हम ताल्लुक नहीं तोड़ लेते, या जो है ना हम कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद जो है वो खानदान में नहीं बर्पा कर देते कि तुमने जो है वो शैतान को अपना शेर क्यों बनाया हुआ है, तो उसी तरीके से इनके साथ भी हम इस तरह नहीं कर सकते हैं। तो इंसान आजाद ना रहे बल्कि मुत्तबे शरीयत बुजुर्ग से मुताल्लिक हो जाए, लेकिन अगर कोई हल्की सी बात कभी कभी कभार पीर से हो जाए तो यूं समझे कि भाई आखिर ये भी तो इंसान है, फरिश्ता नहीं है, इससे गलती हो गई जो तौबा से माफ हो सकती है। जरा जरा सी बात पर एतकाद खराब ना करें, यानी अपना जो उसके बारे में अकीदत है या अपना जो उसके बारे में गुमान है उसको एतकाद कहते हैं, तो उसको खराब ना करें, बल्कि अगर वो इस खिलाफ शरा बात पर डटा रहे तो फिर ताल्लुक तोड़ दे, ठीक है। इसके ऊपर काफी बात पहले हो चुकी है कि भाई खिलाफ शरा बात होती क्या है ना। आजकल तो जो उम्मत के अंदर शरीयत की समझ है, शरीयत का इल्म है, वो इतना ज्यादा खत्म नहीं हो चुका बल्कि इतना ज्यादा मनफी हो चुका है, नेगेटिव में जा चुका है, कि हम जो है वो शरीयत की बुनियाद पर अपने अमाल को नहीं देख पा रहे होते कि हमारे कौन से अमाल सही हैं कौन से अमाल गलत हैं, तो हम दूसरों के अमाल को कहाँ से जज कर सकेंगे कि वो शरीयत के मुताबिक है कि शरीयत के मुताबिक नहीं है। तो इस वजह से ये वाला काम जो है ना ये उलमा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। भाई उलमा अगर किसी के बारे में ऐसा कह रहे हैं कि वो खिलाफ शरीयत बात के ऊपर डटा हुआ है तो फिर उनकी बात मान लेनी चाहिए, और अगर उलमा में से अगर एक आध भी अगर कह रहे हैं लेकिन बाकी नहीं कह रहे हैं, बाकी बल्कि उसके इत्तेबा में ही हैं, बाकी उसके साथ बहुत अच्छा जो है वो मामला रखे हुए हैं, तो फिर उलमा की बात माननी चाहिए ना, ठीक है। एक आध तो होते हैं, हसद भी होता है उनको या गलत फहमी भी हो जाती है, तो वो किसी पीर को जो है वो बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। हसद भी वजह बनती है उलमा के दरमियान, हसद भी एक 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 एग्जिस्टिंग चीज है, एक 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 है, ठीक है, कि उलमा सारे उलमा में नहीं होता लेकिन कुछ ऐसे उलमा होते हैं कि जिनकी जो है वो इखलाकी तरबियत ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं हुई हुई होती है, उनके ऊपर कभी ऐसी आजमाइश आ जाती है कि वो दूसरे उलमा से हसद में मुबतला हो जाते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब हम इसकी वजह से उलमा की पूरी 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 कैटेगरी से जो है वो बदजन्ना हो जाएंगे, अच्छा उलमा तो हसद करते हैं, जैसे दुनियादार लोग कहते हैं मौलवी लोग तो लड़ते रहते हैं, तो आज जो है ना वो पता चला दीन एसेंशियल्स फॉर मेन की वुमेन की जो तालिबात हैं वो कल को जाके कह रहे हैं उलमा तो हसद करते हैं आपस में, इस वजह से हम उलमा की बात ही मानते हैं। भाई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं हम आपको खाली एक बात समझा रहे हैं कि किसी मुत्तबे शरीयत बुजुर्ग के खिलाफ अगर एक दो उलमा कोई गलत बात कह रहे हैं तो उसमें इसका भी एहतमाल है, हमें तो मेजोरिटी को देखना है ना, ठीक है। तो जमहूर उलमा जो है वो अगर उनके खिलाफ नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो बल्कि उल्टा जो है वो माशाल्लाह उलमा की बड़ी से बड़ी तादाद जो है वो उनके साथ जुड़ी भी है। तो फिर उनकी बात माने, अपने पास तो शरीयत का इतना भी इल्म नहीं है कि हमें अपने इल्म अमल का पता हो कि मैं हलाल कर रहा हूँ कि मैं हराम कर रहा हूँ। उल्टा सीधे अजीब अजीब किस्म के हम हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। जैसे वो मर्दों की क्लास के अंदर बात हुई थी ना कि हराम कामों के लिए हम इस्तखारा करने बैठ जाते हैं, ठीक है ना। हराम काम है लेकिन हम इस्तखारा कर रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अल्लाह के बंदे, जब शरीयत के अंदर हुक्म आ गया, ठीक है, कि ये हराम है, अल्लाह ताला इससे नाराज होते हैं, अल्लाह ताला ने इसके ऊपर तुम्हें सजा देनी, अब तुम अल्लाह से क्या मशवरा कर रहे हो, इस्तखारा कर रहे हो कि जो है मैं ये काम करूँ कि ना करूँ। लेकिन करते हैं लोग, हराम काम के लिए इस्तखारा कर रहे होते हैं ना। तो ये हमारी शरीयत की समझ का हाल है, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं कि पीर के बारे में समझना कि उसको हर वक्त हमारी हालत का इल्म होता है, बहुत बड़ा गुनाह है। यानी ये पीर के बारे में गलत अकीदा है कि उसको जो है ना वो गायब का इल्म रखने वाला समझना शुरू कर दिया। आगे कहते हैं कि पीरी मुरीदी के मुताल्लिक ऐसी किताबें कभी ना देखे जिनका जाहिरी मतलब खिलाफ शरा है, ठीक है। ऐसी किताबें पीरी मुरीदी के बारे में, तसव्वुफ के बारे में मत देखे कि जिसका जाहिरी मतलब से मुराद ये है कि ऐसी किताबें मौजूद हैं, ठीक है, जो कि जिनकी लैंग्वेज जो है ना, जिनके जो जो असलूब बयान है वो अच्छा खासा दकीक है, मुश्किल है, ठीक है। तो अब एक आम मुसलमान अगर उन किताबों को पढ़ेगा तो उसको असल हकीकत समझ में नहीं आएगी जो उस किताब के अंदर लिखने वाले ने बयान करी है, बल्कि जाहिरी तौर पर जो उसको नजर आ रहा होगा वो अजीब और गरीब किस्म की बातें होंगी उसके हिसाब से, ठीक है। तो ऐसी किताबें मत देखे, ऐसी किताबें मत देखे, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे बहुत बड़े बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग हैं, बिल्कुल 100% हजरत, क्या नाम है, अगर जहन में नाम हो तो, मशहूर जिनकी किताब है जो है वो फवायद मक्किया, उसका नाम है वैसे किताब का। नहीं जी, अनवर कश्मीरी रहमतुल्लाह कहाँ से आप? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं, वो नहीं। बहुत पुराने बुजुर्गों में से, क्या नाम है, फवायद मक्किया की, तो उनकी किताबें जो है ना वो ऐसी हैं कि जिनको समझना आम आदमी के बस में ही नहीं है, ठीक है। तो नहीं, अब्दुलरहमान कौन, नहीं। तो बहरहाल तो ऐसी किताब जो है, अच्छा कुछ लोगों को जो है ना वो ये शौक लग जाता है ना, ठीक है, कि हम जो है ना वो तसव्वुफ को किताबों से समझें, हम तसव्वुफ की, अब उनको किताबें पढ़ने का चस्का लगा हुआ होता है, जो कि एक बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन भाई किताब हर किस्म की तो नहीं आप पढ़ सकते हैं ना, ठीक है ना। किताब लिखने वाले ने पहली बात है कि वो सही बंदा है कि नहीं है, ठीक है। सही बंदे की किताब पढ़ने से फायदा होता है, गलत इंसान की किताब पढ़ने से फायदा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि वो किताब आपके लेवल की है कि नहीं है। अब आपको अगर अंग्रेजी जुबान आती है तो आप जो है वो मेडिकल साइंस की किताबें पढ़ना शुरू कर दें तो आपको अंग्रेजी की बुनियाद पे वो मेडिकल साइंस की किताबें समझ में आ जाएंगी, या बहुत ही यानी फिलोसफी की किताबें पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है, तो वो आपको समझ में आ जाएंगी किताबें, क्योंकि भाई अंग्रेजी में लिखी हुई और मुझे अंग्रेजी जुबान पढ़नी आती है, ठीक है ना। या इसी तरीके से अरबी जुबान पढ़नी आती है या उर्दू जुबान पढ़नी आती है, ठीक है, तो आपको जो है वो सारी किताबें समझ में आ जाएंगी। फिरका की कोई हिदाया शरीफ जो है वो कोई खातून पढ़ना शुरू कर दे उसको समझ में आ जाएगी, एक से एक किताबें मौजूद हैं। जजाकुमुल्लाह, इन्होंने मदद फरमाई, यहाँ पे नाम लिख दिया, फुतुहात मक्किया शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह की, ठीक है, शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है जो कि तसव्वुफ के मौजू के ऊपर है, लेकिन इसके जाहिरी जो मानी है ना वो बहुत ही खतरनाक है, वो आम बंदे के समझ में नहीं आ सकते, ठीक है। तो अब लोगों को जो चस्का लग जाता है ना किताबें पढ़ना, किताबें पढ़ना, वो अजीब गरीब किस्म की किताबें पढ़ रहे हैं, ठीक है, अलिफ बे उनको नहीं आती है, अमल उनका कुछ भी नहीं, शरीयत का इल्म उनके पास कुछ भी नहीं, लेकिन बैठे हैं तसव्वुफ की किताबें पढ़ने, है ना। एक साहब जो है वो हमसे आज से कोई यानी लिटरली मेरे ख्याल में 10-12 साल पहले, ठीक वो दूर कहीं रहते थे, फोन के ऊपर जो है ना वो हर वक्त पूछते रहते थे, मैंने फलानी किताब में ये पढ़ लिया, और जो है वो हजरत मुजद्दद अल्फिसानी ने कि मक्तूबात में मैंने ये पढ़ा, इसका क्या मतलब है, और मासूम मक्तूबात मासूमिया में मैंने ये पढ़ लिया. वो मुझसे फोन पे, मेरे दफ्तर में बैठा हूँ, मैं उनका फोन ले लेता था कि पता नहीं कौन साहब है, नए नए. लेकिन अब मैं क्या उनको ये बातें समझाऊं, ठीक है ना. लेकिन उनको था शौक किताबें पढ़ने का. अमल का ये हाल है कि 12 साल गुजर गए, अभी तक उनको बुनियाद भी नहीं समझ में आती, अमली तौर पर बुनियाद भी उनको समझ में नहीं आती, लेकिन शौक लगा हुआ था किताबें पढ़ने का, ठीक है. उसी तरीके से इंटरनेट के ऊपर जा जा करके ना, जो है वो तसव्वुफ के ऊपर अजीब अजीब किस्म के चीजें देखते रहते हैं, ठीक है. तो हरगिज हरगिज ऐसा नहीं कह रहे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन बहुत बड़ी गुमराही के अंदर आप मुब्तला हो जाएंगे, ठीक है. तो ऐसी किताबें हरगिज ना देखें कि जिसका जाहिर मतलब खिलाफ शरा है. भाई सीधी सीधी तसव्वुफ जो है ना, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं है, ठीक है. यानी हमारे लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं है आज, बल्कि कुदरतन हफ्ते को जो हमारे यहाँ मजलिस होती है, तो उसके अंदर भी किसी भाई के जवाब सवाल के जवाब में साजिद नहीं बात समझाई थी, ठीक है, कि तसव्वुफ को कोई अजीब गरीब किस्म की अनहोनी और अजीब यानी कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज बनाने की जरूरत नहीं है. भाई तसव्वुफ है कि जिसके हम अल्लाह ताला के हुक्मों को दिल के शौक के साथ करने के काबिल हो जाए, दिल का शौक पैदा हो जाए अल्लाह के हुक्मों को मानने के लिए, और गुनाहों से दिल में नफरत पैदा हो जाए. बस सीधा सीधा ये है तसव्वुफ, ठीक है. अब जाहिर है जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो फिर अपने इस इल्म को मुदव्वन कर देते हैं, किताबी शक्ल में लिख देते हैं, और मकसद उनका ये होता है कि बाकी जो आगे आने वाले एक्सपर्ट्स होंगे वो उन किताबों से फायदा उठाएंगे. बस इतनी सी किताबों की हकीकत होती है, ठीक है. रिकॉर्ड कर देना बातों को, जो बात आपने समझी, जो बात आपके ऊपर अल्लाह ताला ने मुनकशिफ फरमाई, उसको आप रिकॉर्ड कर देते हैं, ताकि एक्सपर्ट्स जो अगली नस्लों में आएंगे वो उन किताबों से फायदा उठाएं. इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई काम करने के लिए जो है वो किताबें देखनी पड़ेंगी, ठीक है. अच्छा, कहते हैं कि इसी तरह जो अशआर खिलाफ शरा है उनको भी ना पढ़े, उनको कभी ना पढ़े, ठीक है. यानी कुछ ऐसे अशआर हैं कि जिनके अंदर जो है ना वो किसी इंसान की तारीफ इन अल्फाज में की गई है कि जैसे कि वो कोई यानी गैबी सलाहियतों का मालिक है, कोई बहुत ही जैसे ऐसी ऐसी सलाहियतें उसके अंदर हैं कि जो कि अल्लाह ताला के अंदर होती है, ठीक है, या जो कि किसी इंसान के अंदर मुमकिन नहीं है. अब वो तारीफ के अंदर जब शायर हजरात जो है ना वो बातें लिखते हैं, तो शायरों का ये अंदाज होता है कि वो आसमान और जमीन के पुलावे मिलाते हैं, आसमान और जमीन के पुलावे, ठीक है. और किसी को भी जो है ना वो यानी शेर व शायरी के अंदर किसी को भी बहुत ऊंचा बढ़ा करके पेश कर देना, और किसी बड़े को जो है वो बहुत गिरा करके पेश कर देना, ये शेर व शायरी का एक कमाल होता है, और शायर के लिए जो है ना ये काम मुश्किल नहीं होता, ठीक है. तो अगर खिलाफ शरीयत उसके अंदर बातें हैं शेर व शायरी के अंदर, तो साले को जो है वो शायरी भी नहीं पढ़नी चाहिए. बाज लोग कहते हैं कि शरीयत और चीज है और तरीकत पीरी मुरीदी और चीज है, वो अलग है, वो अलग एक बिल्कुल चीज है, और उसका कोई ताल्लुक नहीं है शरीयत के साथ. यानी जिसको के तरीकत कहते हैं, पीरी मुरीदी यानी इस्लाह का जो रास्ता है, ठीक है ना, उसको तरीकत, पीरी मुरीदी, तज़किया नफ्स, तस्फिया कल्ब, तसव्वुफ, ये सारे नाम जो है ना वो दिए जाते हैं इसको, तरीकत को. और शरीयत जो है वो उसके अंदर कुरान और हदीस मुबारक के अंदर, कुरान मजीद हदीस मुबारक में जो शरिया जो जो अवामिर और नवाही हैं, अल्लाह ताला ने किन कामों को करने का हुक्म दिया और किन कामों से रुकने का हुक्म दिया, अवामिर और नवाही, ये शरीयत है, ठीक है. तो लोग कहते हैं कि नहीं जी, तरीकत कोई बिल्कुल ही अलग चीज है और तरीकत जो है ना वो बिल्कुल अलग चीज है, इन दोनों का आपस में कोई जोड़ नहीं है. नहीं, हरगिज ऐसा नहीं है, इन दोनों का आपस में जो है ना वो लाजिम व मलजूम वाला जोड़ है, ये एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते. बेशक ये अलग तो हैं, यानी इसका मकसद अलग है और इसका मकसद जो है वो अलग है. शरीयत का मकसद यह है कि आपको ये बताया जाए कि अल्लाह ताला किस चीज से राजी होते हैं और अल्लाह ताला किस चीज से नाराज होते हैं, ये अहकामात हैं. अहकामात का सिखाना ये शरीयत के अंदर किया जाता है। और तरीकत के अंदर इन अहकामात को के ऊपर अमल करने के लिए जज्बा पैदा करना, धुन पैदा करना, ठीक है, ये जो है वो तरीकत का मकसद है। ठीक है भाई, आपको जो है वो क्या कहते हैं, स्कूल के अंदर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, स्कूल के अंदर जो है वो आपको पढ़ा दिया, मैथमेटिक्स पढ़ा दी, मैथ के तरीके बता दिए, इक्वेशंस बता दी, एलजब्रा समझा दिया आपको, जो है वो ज्योमेट्री समझा दी, ट्रिग्नोमेट्री समझा दी, ये आपको मैथ की क्लास के अंदर समझा दिया, ठीक है, साइंस की क्लास के अंदर आपको जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दिया, आपको जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा दिया, आपको जो है वो अर्थ साइंसेस पढ़ा दी, आपको जो है वो फिजिक्स पढ़ा दी, केमिस्ट्री पढ़ा दी, ठीक है, उसी तरह किसी और क्लास के अंदर, उर्दू की क्लास के अंदर जो है वो आप सवाल लिख करके पूछ रहे हैं, जिन्होंने रेज हैंड किया हुआ, ठीक है, और जिन्होंने अनम्यूट किया हुआ है वो बराए मेहरबानी म्यूट कर दें माइक को, या एडमिन साहब उनको म्यूट कर दें। तो ये आपने पढ़ ली स्कूल के अंदर क्लासेस में जा करके, लेकिन अब आपका जी नहीं चाह रहा कि मैं इन इन चीजों के ऊपर जो है ना वो जरा रिसर्च करूं, बिल्कुल जी नहीं चाह रहा, मूड नहीं हो रहा, बस मारे बांधे आपने जो है ना वो इन्फॉर्मेशन पढ़ ली क्लास में जा करके, अब ना आपको जो है उनको समझने का दिल चाह रहा है, ना आपको जो है ना वो उनके ऊपर अमल करने का कोई जी चाह रहा है, ना आपको कोई शौक पैदा हो रहा है कि मैं दोबारा स्कूल जाऊं और मैं और इल्म हासिल करूं, कोई शौक वौक पैदा नहीं हो रहा। तो अब ये शौक पैदा करने के लिए क्या चीज की जाएगी, ठीक है ना, इसके लिए एक अलग रास्ता इख्तियार किया जाएगा कि भाई कोई या तो घर के अंदर जो पेरेंट्स होंगे वो आपको मोटिवेट करेंगे, ठीक है ना, वो आपके अंदर जज्बा जो है वो पैदा करने की कोशिश करेंगे, आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, फवायद बताएंगे इल्म हासिल करने के, और इल्म ना हासिल करने के नुकसानात बताएंगे, ठीक है, फिर अगर पेरेंट्स की बात आपके लिए काफी नहीं हो रही होगी तो फिर जो है वो हो सकता है किसी और शख्सियत के पास आपको लेकर के जाए कि जो कि आपके सामने इल्म के फवायद खोले और आपके अंदर शौक पैदा करने की कोशिश करे, ठीक है, तो अब जाहिर है ये दो अलग अलग चीजें नजर आएंगी ना, कि भाई वो तो स्कूल के अंदर उन्होंने आपको साइंस और लैंग्वेज और मैथ्स पढ़ा दी, लेकिन अब मोटिवेशन पैदा करने के लिए आपको जो है वो किसी और जगह पे ले जाया जा रहा है, या पेरेंट्स काम कर रहे हैं, टीचर्स ये काम नहीं कर रहे थे बल्कि पेरेंट्स ये काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दोनों का आपस में जोड़ है कि नहीं है, दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है, दोनों का एक दूसरे का आपस में जोड़ है, अगर आप खाली मोटिवेशन पैदा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो इल्म है वो आप हासिल ही नहीं कर रहे, तो फिर मोटिवेशन का क्या फायदा, खाली खाली मोटिवेशन पैदा करके आप क्या करेंगे भाई, इल्म हासिल करने के लिए मोटिवेशन पैदा कर रहे हैं ना, तो इल्म भी तो हासिल करें ताकि मोटिवेशन हो, तो इल्म से जो है वो फायदा हासिल हो, खाली मोटिवेशन से तो फायदा हासिल नहीं होगा ना, उसी तरीके से खाली इल्म हासिल करे चले जा रहे हैं और कोई मोटिवेशन नहीं, कोई जज्बा नहीं, कोई शौक नहीं, तो ऐसा खाली इल्म हासिल करने से भी आपको फायदा नहीं होगा, तो भाई इन दोनों का आपस में जोड़ है कि नहीं, ठीक है, एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं ना ये दोनों के दोनों, अगरचे के बजाहिर ये दोनों अलग मेहनतें लग रही हैं, बजाहिर इन मेहनतों को करने वाले लोग भी आपको अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन तो बिल्कुल यही मामला जो है वो शरीयत का भी है, तरीका जो है वो मोटिवेशन पैदा करने वाली लाइन है, और शरीयत जो है वो उलूम का सिखाने वाली कि भाई ये इसमें क्या चीज करना है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या चीज नुकसान है, उसके क्या नुकसान आते हैं वगैरह वगैरह, तो जो लोग कहते हैं ना कि शरीयत और चीज है और तरीकत यानी ये और चीज है, ये लोग गुमराह हैं, उन्हें झूठा समझना फर्ज है, ठीक है, ऐसे लोगों को झूठा समझना ये फर्ज है, यानी उनके बारे में
बस
अच्छा गुमान रख करके ना बैठ जाए, ठीक है, उनको अच्छा यानी कोई 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 शख्स है जो के शरीयत के खिलाफ बात कर रहा है, दीन के खिलाफ बात कर रहा है, ठीक है ना, उसके बारे में यानी उसको झूठा समझना ये भी आपके दीन के लिए जरूरी है, ये भी आपके दीन के लिए जरूरी है, उसको अगर आप सच्चा समझना शुरू कर देंगे, उसको अगर आप नेक समझना शुरू कर देंगे, तो इसका आपके दीन के ऊपर एक मनफी असर पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि कुदरतन अभी जुमे की क्लास, जुमे का जो बयान था ईमान और अकायद के ऊपर, उसमें आखिरी बात साजिश ने ही करी थी कि जो इस किस्म के लोग आज दीन की बातें कर रहे हैं मीडिया के ऊपर आकर के और सोशल मीडिया के ऊपर आकर के, टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी और अखबारात वगैरह के अंदर भी। तो अब ये कहना कि हाँ भाई बात तो दीन ही की कर रहा है तो इस वजह से ना उसको सुनने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है भाई क्यों हर्ज नहीं है, वो गलत बात कर रहे हैं दीन की, वो दीन को जो है वो दीन के जो तकाजे हैं उनको पामाल करके बात कर रहा है। तो आप उसके बारे में नरम रवैया कैसे रखी हुई है, उसके बारे में तो सख्त रवैया होना जरूरी है, ठीक है। तो हजरत ये फरमा रहे हैं कि उन्हें झूठा समझना फर्ज है। अब कोई कहे नहीं 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 भाई झूठा किसी को समझना नहीं जो है ना, ये तो बहुत बुरी बात होती है, अच्छा गुमान रखना चाहिए। क्या मतलब अच्छा गुमान रखना चाहिए, अच्छा गुमान झूठे को सच्चा समझ करके अच्छा गुमान नहीं रखा जाता, झूठे को सच्चा समझ करके अच्छा गुमान नहीं रखा जाता, बल्कि अच्छा गुमान रखने का क्या मतलब होता है ये आप बता दें, अगर किसी के बारे में अच्छा गुमान रखना इसकी क्या हकीकत है, इसका इसका मतलब क्या है किसी के बारे में अच्छा गुमान रखना, कि वो झूठ बोल रहा है और उलमा भी बता रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है और साबित हो रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसको सच्चा समझना शुरू कर देना, हाँ भाई हमने उसके साथ बड़ा अच्छा गुमान रखा हुआ है, ये अच्छा गुमान रखना कहलाता है। अच्छा गुमान रखने का क्या मतलब है, जो तसव्वुफ को नहीं मानता मानता हो उसके बारे में क्या हुक्म है, उसके बारे में हुक्म यह है कि उसको एक रख के लगाए क्या हुक्म है, क्या मतलब उसके बारे में क्या हुक्म है, जो तसव्वुफ को नहीं मानता, तसव्वुफ है कि आप मानती हो तसव्वुफ को, ये बताए ना तसव्वुफ होता क्या है, आप खुद भी नहीं मानती क्योंकि तो आपको पता नहीं है तसव्वुफ क्या होता है, ठीक है। तो सारा सवाल का ये है कि जो तसव्वुफ को नहीं मानता उसके बारे में क्या हुक्म है, उसका हुक्म ये है कि आप उसका पीछा छोड़ दें और उसको तसव्वुफ समझाने की कोशिश भी ना करें, ठीक है ना, उसको तसव्वुफ समझाने की कोशिश भी ना करें, उसको सीधा सीधा जो है ना वो दीन समझाएं, दीन ठीक है, उसको सुन्नत समझाएं, नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी, सहाबाए कराम की जिंदगी, ठीक है ना, तसव्वुफ को, तसव्वुफ की जान छोड़ दें, तसव्वुफ का पीछा छोड़ दें और उस बंदे का भी पीछा छोड़ दें तसव्वुफ समझाने के, या तसव्वुफ मनवाने की कोशिश ना करें किसी से, ठीक है ना, शरीयत समझाएं और सुन्नत समझाएं बस, ठीक है ना, हो सकता है कि उसको तौबा की तौफीक मिल जाए। जी माशाल्लाह इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, किसी के साथ अच्छा गुमान रखने का मतलब ये है कि अभी तो वो कर रहा है गुनाह, झूठ बोल रहा है, यानी गुमराही फैला रहा है, लेकिन इसको भी तौबा की तौफीक मिल सकती है, ठीक है ना, इसको भी तौबा की तौफीक मिल सकती है, ये है अच्छा गुमान रखना, ठीक है ना, हमें ये नहीं पता कि अच्छा गुमान रखने का ये मतलब होता है, तो इस वजह से है ना वो झूठे को सच्चा समझना और बेदीन को जो है वो दीनदार समझना और जाहिल को जो है वो आलिम समझना, ये हम अच्छा गुमान रखना समझते हैं, ठीक है, शायद उसको एक दिन इस गुनाह से अल्लाह ताला तौबा की तौफीक अता फरमा दे। जी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तसव्वुफ का मतलब, तसव्वुफ का मतलब क्या है, पहली बात तो ये है कि अभी जो उनको आप सुनाया है तो आपने नहीं सुना, आपने नहीं सुना कि आप तसव्वुफ का पीछा छोड़ दें, ठीक है, तसव्वुफ का मतलब समझने की कोशिश ना करें, ठीक है, दीन का मतलब समझने की कोशिश करें, यहाँ पे हम किताब जो पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर तसव्वुफ का लफ्ज ही नहीं आया, तरीकत का लफ्ज आया था, तसव्वुफ का तो लफ्ज मैंने पढ़ा ही नहीं कहीं पर, तो फिर आप क्यों पूछ रहे हैं तसव्वुफ क्या, भाई उन्होंने गलत सवाल किया था तो उसका मतलब ये को थोड़ी है कि अब आप जो है वो गलत सवाल के ऊपर एक और गलत सवाल करना शुरू कर दें, ठीक है ना, उनके सवाल के जवाब को सुन सुन लें, ठीक है, उनको ये कहा था ना जवाब में कि तसव्वुफ के पीछे मत पड़े, ठीक है, खत्म करें इस तसव्वुफ से, ठीक है ना, ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं, दज्जाल आने वाला है और उसकी फिक्र करें कि अपने आप को दज्जाल से कैसे बचाना है, ठीक है ना। अच्छा अपनी मान के पास करते हैं, क्या ये भी कह सकते हैं कि वो अपनी मजबूरी से कर रहा होगा, उसके लिए दुआ करें। क्या ये भी कह सकते हैं कि वो अपनी मजबूरी से कर रहा होगा, यानी झूठ की जो वो पूरी दुनिया के अंदर तालीम कर रहा है, प्रचार कर रहा है, तो वो अपनी मजबूरी की वजह से कर रहा होगा, उसके लिए दुआ करें। डिपेंड करता है कि वो कौन है, नहीं डिपेंड करता है कि वो कौन है। तो हो सकता है, ऐसा मुमकिन है कि कोई जो है वो गलत बात कर रहा है, तो वो अपने किसी मजबूरी की वजह से, गन ऑन हिज हेड, ठीक है ना, कोई जो है वो उसको जान की धमकी देकर के जो है ना वो सही वाले काम कर पा रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा गुमान रखने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना, सिवाय उस सिचुएशन में कि जब उस शख्स की बाकी जिंदगी आपको अच्छी नजर आ रही हो, उस शख्स की निस्बत आपको अच्छी नजर आ रही हो, ठीक है, जैसे कोई उलमाए हक में से है, कोई हमारे अकाबरीन में से है, लेकिन इस वक्त जो है ना वो मीडिया पे आकर के कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो कि फैक्चुअली सही नहीं है, ठीक है, जो कि फैक्चुअली सही नहीं है, जो कि हकीकत वैसी नहीं है, लेकिन वो मीडिया पे आके ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन पीछे से उनकी उनका ताल्लुक अकाबरीन के साथ है, उलमाए हक के साथ है, और वो बदस्तूर यानी बरकरार है उनका ताल्लुक, यानी कि उन्होंने अपना ताल्लुक तोड़ लिया है, पहले होता था उनका ताल्लुक, अब तोड़ लिया उन्होंने, नहीं बल्कि अभी भी उनका ताल्लुक मजबूत है पीछे ना उलमाए हक के साथ, और उनकी बाकी जिंदगी जो है वो शरीयत सुन्नत के मुताबिक ही है। तो अब अगर मीडिया पे आकर के कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि वो हकीकत के मुताबिक नहीं है, तो उनके बारे में अच्छा गुमान रखें और यही सोचें कि उनसे जो है ना वो या तो मजबूरन ये काम करवाया जा रहा है। आजकल बाय द वे ऐसा ही हो रहा है, आजकल ऐसे ही हो रहा है, ये यही दौर है कि जिसके अंदर जो लाइमलाइट में आ गया ना, जो मीडिया के ऊपर आ गया ना, अब वो उसको पकड़ लिया जाता है, इसके बाद उसको छोड़ा नहीं जाता कि अब आप जो है ना वो सही सही बातें जो है वो मीडिया के ऊपर आके करते हैं। नहीं भाई, पहले तो वो आए थे ना, मतलब बदनीयती से तो मीडिया पे नहीं आए थे, वो मीडिया पे आए थे अखबार की जो है वो तरवीज और इशारत के लिए आए थे, लेकिन जमाना अब वो शुरू हो चुका है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाता, ठीक है ना, किसी भी ऐसी शख्सियत को जो कि मीडिया के ऊपर आ चुका है और जिसको के लाखों करोड़ों लोग जो है ना अब सुन रहे हैं मीडिया के ऊपर, अब उसको छोड़ा नहीं जाता, ठीक है, तो इस वजह से ऐसा ऐन मुमकिन है कि अगर वो कोई गलत बात कह रहे हैं तो वो मजबूरन कह रहे हैं, वरना असल में वो इस बात पे बिलीव नहीं करते, तो इसके लिए उनकी उनकी जो जाती जिंदगी है उसको देख लिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई शख्स जो है वो यानी आजकल जैसे मीडिया स्कॉलर्स है ना, हर किस्म के जो है वो नौजवान लड़का लड़की, तो जो है वो कोई खातून आई हुई हैं, तो कोई जो है वो कोई पता नहीं कौन आए हुए हैं, आपको उनका कोई पीछे कोई नस्बत भी नहीं, कोई उनका ताल्लुक उलमाए हक के साथ नहीं, और उनकी बाकी जिंदगी के बारे में भी आपको कुछ नहीं पता, अब वो आकर के जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं तो आप उनके बारे में ये सोचना शुरू कर देंगे, चार मजबूरी से कर रहा होगा, ठीक है ना भाई, हो सकता है मजबूरी से नहीं कर रहा है ना, आपको क्या पता मजबूरी से कर रहा है भाई, आप कुछ जानते ही नहीं है उसके बारे में, तो खामखा मजबूरी का जो है वो उसको क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है, बल्कि खत्म करें ना, आप क्यों सुनते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है, तो बिल्कुल पढ़े ही नहीं इस सारे के सारे चक्कर में, अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करें, सोचें। अभी आप कह रहे थे इसलिए मुझे समझ नहीं आया, इसलिए पूछ लिया जी, ठीक है, तो आप भी सुन लिया, तो ये लोग गुमराह हैं, उन्हें झूठा समझना फर्ज है, ठीक है, तो स्पेशली आजकल जो ये मशरूम्स की तरीके से पॉपअप हुए हैं ना पूरी दुनिया के अंदर खाने वाले, तो उनको झूठा समझना फर्ज है, अगर वो यानी अकाबरीन से कटे हुए लोग हैं और जो है ना वो अपना एक नई रास्ता निकालने वाले लोग हैं, तो उनको झूठा समझना फर्ज है। अगर पीर किसी खिलाफ शराबात का हुक्म दे तो उस पर अमल दुरुस्त नहीं है, ला ताअता लिमखलूक फी मासियतिल खालिक, ये वाला उसूल जो है हदीस मुबारका से जो हमें मिल चुका है, ये हर एक के ऊपर अप्लाई होता है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो दफ्तर का बॉस हो, चाहे वो शौहर हो, चाहे वो पीर साहब हो, ये वाला उसूल हर एक के ऊपर अप्लाई होता है कि शरीयत के खिलाफ अगर वो हुक्म दे रहे हैं तो उसके ऊपर अमल नहीं किया जाएगा। क्या ये भी कह सकते हैं कि वो अपनी मजबूरी से कह रहा है या फिर पीट किया है? अच्छा, उन्होंने सॉरी। तो अगर पीर किसी खिलाफ शरह बात का हुक्म दे तो उस पर अमल दुरुस्त नहीं है। ठीक है, तो पीछे शरीयत के बारे में बात हो चुकी है कि भाई शरीयत का इल्म है तो फिर आप खिलाफ शरह का फैसला करेंगे ना। अगर आपके पास शरीयत का इल्म नहीं है तो फिर आप पीर साहब के शरीयत के यानी अमलों का कैसे फैसला करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए जो है ना, फसअलु अहले जिक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर आपको शरीयत का इल्म नहीं है तो इल्म वालों से पूछो। ठीक है, और वो अहले
अच्छा
हक उलमा ही होते हैं कि उनसे पूछना होगा कि भाई ये जो हुक्म कर रहे हैं खिलाफ शरीयत है कि नहीं। अगर वो उस पर जिद करे तो उससे खत्म कर दे, यानी उसने हुक्म दिया तो उस हुक्म देने के ऊपर खाली ताल्लुक नहीं खत्म कर दे, बल्कि अगर वो इसरार करे ना इसके ऊपर तो फिर ताल्लुक ही खत्म कर दे उसके साथ। ठीक है, अजीब अजीब मामला सामने आते हैं, बल्कि जो है वो एक अजीब सामने आया है, क्या बताया आपको। बहरहाल ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि बजाहिर जो है ना वो कम इल्म लोगों को समझ में नहीं आ रही होती है कि ये बात के खिलाफ शरीयत है। ठीक है, तो ये किसी ने अपनी वीडियो ऑन करी हुई है भाई, इसको बंद करें, वीडियो को अपने बंद करें। अच्छा, अगर अल्लाह ताला का नाम लेने की बरकत से दिन में कोई अच्छी हालत पैदा हो या अच्छे ख्वाब नजर आए या जागते में कोई आवाज या रोशनी मालूम हो, ख्वाब में रोशनी आपको नजर आनी शुरू हो जाए या जागते में आपको रोशनियां नजर आनी शुरू हो जाए, ठीक है, जिक्र करने के बाद, उमूमन ऐसा होता है जिक्र करने के बाद जो है ना वो कुछ जो जो सेंसिटिव तबीयतें होती हैं ना, पहले से सेंसिटिव तबीयतें होती हैं उनके ऊपर जरा वो ज्यादा अगर जिक्र कर लें, मुराकबा कर लें, या जो है वो कोई बहुत ज्यादा तस्बीहात पढ़ लें तो उनको जो है ना फिर बत्तियां वत्तियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं, लाइटें वाइटें नजर आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और फिर वो फील करते हैं कि अच्छा ये अनवारा तो तजल्लियात जो है ना वो मेरे ऊपर नाजिल हो रहे हैं और मैं जो हूँ वो आसमान की सैर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, तो उसको फरमा रहे हैं कि भाई अगर ऐसा कोई मामला हो रहा है ना तो अपने पीर के अलावा किसी से उसका जिक्र ना करें। ठीक है, ना कभी अपने वज़ाइफ और इबादत का किसी से इजहार करे, यानी दूसरों को अपने हालात और कैफियात वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने शेख से ही जो है ना उनका जिक्र करें, उन्हीं को अपनी कैफियत वगैरह का इजहार करें, क्योंकि यही होता है कि इब्तिदा में जो है ना वो शैतान बहुत किस्म की गलत फहमियों के अंदर इंसान को डाल देता है। तो शेख चूंकि उसको तबीब की नज़र से देख रहा होता है तो उसको अंदाजा हो जाता है, या अल्लाह ताला की तरफ से शेख के दिल में बात डाल दी जाती है कि भाई ये जो कैफियत वगैरह बता रहे हैं ना ये है नहीं ऐसा। ठीक है, ये इसको जो है ना वो शैतान अपने बारे में धोखे में मुबतला कर रहा है ताकि ये किसी और तरीके से गुमराही में मुबतला हो जाए। जैसे हमारे यहाँ जो है वो मुराकबे का जो मामूल बताया जाता है कि जी अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही है, तो अब बहुत से लोग हैं जो कि एक हफ्ते के बाद ही आके कहते हैं हाँ जी मुझे अल्लाह अल्लाह की आवाज आनी शुरू हो गई। ठीक है, तो अब शेख को पता है ना कि भाई ये अल्लाह अल्लाह की आवाज जो है वो इतना आसानी से आनी शुरू हो ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इतनी आसानी से किसी को अल्लाह अल्लाह की आवाज आनी शुरू हो जाए अपने दिल से। ठीक है, तो वो फिर मुनासिब अंदाज से जो है ना वो उनको समझा देते हैं कि नहीं अभी आप इसकी फिक्र ना करें, अभी आप मेहनत करते हैं, अभी तो बड़ा यानी अभी तो बहुत कुछ करने की जरूरत है। ठीक है, तो बेसिकली मुरीद को जो है वो गलत फहमी में मुबतला होने से फिर शेर के वास्ते से अल्लाह ताला बचा देते हैं। दूसरों को बताएंगे तो दूसरे जो है या तो वो आपसे हसद में मुबतला हो जाएंगे या जो है वो आपको सठियाया हुआ या जो है वो कुछ और ही किस्म का माले फोलिया में मुबतला किस्म का इंसान समझना शुरू कर देंगे। ठीक है, किसी दूसरे से इसका इजहार ना करें। अगर पीर ने कोई वजीफा या जिक्र बताया और कुछ मुद्दत तक उसका असर या मजा मालूम ना हो तो इससे तंग दिल या पीर से बदएतिकाद ना हो जाए। अगर आपको जो जो नॉन सेंसिटिव तबीयतें होती हैं तो उनको अल्लाह अल्लाह की आवाज़ जो है वो सालों नहीं आ रही होती है। ठीक है, तो अगर आपकी तबीयत ऐसी है या आपके अंदर डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है तो अब आपको तो ये कैफियत वगैरह नहीं मिलेंगी, तो उसके ऊपर जो है ना वो तंग दिल ना हो जाए और अपने शेयर से बदएतिकाद ना हो जाए, बल्कि यूं समझे कि बड़ा असर यही है कि अल्लाह का नाम लेने का दिल में इरादा पैदा होता है और इस नेक काम की तौफीक होती है। और ऐसे असर का कभी दिल में ये ख्याल ना लाए कि मुझे ख्वाब में बुजुर्गों की ज्यारत हुआ करेगी। यानी जिक्र मुराकबा करने के जो है ना वो मकसद क्या है कि मुझे जो है वो ख्वाब में जो ज्यारतें होंगी, नबी अलैहि सलाम की ज्यारत हो जाएगी, या जो है वो किसी और बुजुर्ग की या किसी और नबी की जो है वो ज्यारत हो जाएगी, मुझे होने वाली बातें मालूम हो जाए करेंगी, यानी मुझे मुस्तकबिल का इल्म हासिल हो जाएगा। ये जिक्र मुराकबा और ये जिंदे वल्ले करने से जो है ना मुस्तकबिल का इल्म हासिल हो जाएगा, या मुझे खूब रोना आया करेगा। अब जो है ना वो मेरे अंदर ऐसी जो है वो यानी दिल ऐसा रिक्कत पैदा हो जाएगी मेरे दिल के अंदर कि बस जो है ना वो तिलावत करते हुए मुझे रोना आना शुरू हो जाएगा, दुआओं के अंदर रोना आना शुरू हो जाएगा। इसको भी मना किया, ठीक है, कि ये भी दिल में ना लेकर क्या है कि मुझे रोना आना शुरू हो जाएगा, मुझे इबादत में ऐसा इन्हिमाक हासिल हो जाए कि दूसरी चीजों की मुझे खबर ही ना रहे, ठीक है, ये भी मकसद नहीं है कि इबादत के अंदर बस जो है ना वो अल्लाह अकबर कहा और जो है वो साथ में आसमान में पहुंच गया, और जो है ना वो ऐसा अन तअबुद अल्लाह का अन्न का तरा हो वह इलम तरुन तकुन तरा हो वह इन्ना यराक वाली कैफियत मुझे हासिल हो जाएगी, ठीक है, कि मैंने अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधे और अल्लाह ताला मेरे सामने और मैं अल्लाह ताला के सामने, ठीक है, ये भी ना सोचे, ये भी ना सोचे, ठीक है, यानी ये नीयतें नहीं होनी चाहिए, ये नीयतें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो फिर कौन सी नीयत होनी चाहिए? फिर क्यों जो है वो पीर साहब के साथ ताल्लुक बनाए हैं, फिर क्यों जो है वो जिक्र वजीफे जो है वो कर रहे हैं पीर के बताए हुए, क्यों कर रहे हैं, क्या वजह, क्या नीयत होनी चाहिए? तो फरमाते हैं कि कभी कभी ये बातें हो भी जाती हैं और कभी नहीं होती, ठीक है, अगर हो जाए तो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए, और अगर ना हो या होकर गुम हो जाए या होकर कम हो जाए तो परेशान ना हो, ठीक है। यानी ये जो कैफियत है ना कि रोना आ गया, भाई कभी कभार रोना आ सकता है, लेकिन अब ये हमेशा ही रोना आ जाए तिलावत में और नमाज में और दुआओं में, नहीं, कभी कभार कोई ऐसा मौका होता है जिसके अंदर आपको रोना आ जाए, ठीक है, लेकिन अगर जब आ जाए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, ठीक है। उसी तरीके से बुजुर्गों की कभी अगर ज्यारत हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, ठीक है, होने वाली बात मालूम हो जाए तो ये तो यानी कोई वजह होती है कि अल्लाह ताला कोई दिन में बाढ़ डाल देते, क्या वैसा होने वाला है, तो भाई वो तो किसी के भी दिन में ऐसे बाढ़ डाल सकते हैं, इसके लिए कोई नेक परहेजगार होने की कोई शर्त नहीं है, ठीक है। बहरहाल अगर कोई ऐसी चीज हो रही है ना तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर नहीं हो रही है या होकर के कम हो जाए तो फिर परेशान ना हो, यानी पहले एकदम से होनी शुरू हो गई थी और फिर जो है ना वो आंखों से आंसू जो है वो खुश्क हो गए, अब नहीं आते आंसू, तो उसके ऊपर परेशान ना हो। अलबत्ता अलबत्ता के बाद असल चीज आ रही, क्या फरमाते हैं, खुदा ना खास्ता अगर शरीयत की पाबंदी में कमी होने लगे या गुनाह सरजद होने लगे तो ये बात परेशान की, अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी होनी शुरू हो जाए, ठीक है, तो ये बात परेशान की, इसके ऊपर परेशान, और यही असल है। जल्दी हिम्मत करके अपनी हालत दुरुस्त करे और पीर को इत्तला दे और वो जो हिदायत दे उस पर अमल करे, यानी दोनों काम करे, एक तो खुद हिम्मत करे कि भाई कैसे मुझसे गुनाह हो रहा है, कैसे मुझसे नमाजें कजा हो रही है, क्यों, क्या वजह है कि मैं मुझसे जो है वो झूठ पे काबू नहीं पाया जा रहा, हिम्मत करे कि नहीं, इरादा करे अल्लाह ताला, ए अल्लाह गलती होगी माफ कर दीजिए, आइंदा नहीं करूंगा, फौरन तौबा करे, और साथ साथ जो है वो अपने पीर को इत्तला कर दे, यानी कोई खत वगैरह लिख करके बता दे कि मेरे ऊपर ये वाली कैफियत आई हुई है, ताकि एक तो वो दुआ भी करें और दूसरी ये है कि अल्लाह ताला उनके दिल में कोई बात डाले कि भाई ये वजह हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर जब कोई बताता है कि फजर की नमाज मेरी कजा हो रही है, हफ्ते में जो है ना वो दो नमाजें कजा हो जाती है फजर की, या महीने में जो है वो पाँच छः सात नमाजें, को कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनकी दो चार होती हैं और बाकी सारी की सारी कजा हो जाती है, लेकिन वो बताते नहीं है, ठीक है ना भाई, ऐसी कैफियत को बता दें, क्योंकि फजर की नमाज के जो इस तरह से कजा होने ही वाली कैफियत होती है ना, ये लाजमन गुनाह कबीरा की वजह से होती है, ठीक है, दिन में जो है वो गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो रहे होते हैं और तौबा नहीं कर रहे होते हैं, उसकी तरफ अक्सर तो ध्यान ही नहीं होता कि हम इस गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो रहे हैं, अल्लाह ताला खुद फौरन उसके ऊपर जो है ना वो बुखार लाते हैं, बुखार, ठीक है। ये फजर की नमाज का कजा होना जो है ना ये बुखार है। डॉक्टर हजार से आप पूछ रहे हैं कि बुखार अल्लाह ताला की, ये भी एक नेमत है बुखार का हो जाना। क्यों? कि जिस्म के अंदर अगर कोई ऐसी चीज हो रही होती है ना, ट्यूमर वगैरह या कोई और इस किस्म की नेगेटिव चेंजेस आ रही होती हैं, तो बुखार के जरिए से इंडिकेशन हो जाती है इंसान को, फिक्र हो अच्छा कुछ मसला है, फिर वो उसका पैनाडोल या टाइनेनॉल से हल करने की कोशिश करता है, और अगर बुखार फिर भी नहीं खत्म होता तो वो डॉक्टर की तरफ जाता है, हॉस्पिटल जाता है, ठीक है ना। तो हॉस्पिटल वाले फिर मजीद डायग्नोस्टिक चलाते हैं, तो पता चलता है कि भाई इसकी तो कोई बड़ा मसला है इसके अंदर, फिर उसका इलाज शुरू हो जाता है, ठीक है। कोई कहे कि नहीं बुखार हो रहा है तो ये तो होता ही रहता है, इग्नोर करो जी बुखार को, इग्नोर करो, ठीक है ना। और हो रहा है बुखार खत्म नहीं हो रहा, लेकिन उसको इग्नोर कर रहा है, तो उसके जो अंदर मसला क्रिएट हो चुका है वो बढ़ता चला जाएगा, और उसकी जगह कोई यानी रोक टोक नहीं रहेगी फिर उसकी। तो इसी तरीके से फजर की नमाज से कजा हो जाना जो है ना, वो एक आध दफा कभी कजा हो जाना, वो भी किसी ना किसी एक वजह से कभी हो जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि जी मुस्तकिल वो कैफियत चल रही है। लेकिन अगर कसरत के साथ फजर कजा हो रही है ना, तो और उसके लिए हफ्ते में दो बार जो है ना वो कम अज कम इसकी मिनिमम समझ लें, ठीक है, कि अगर हफ्ते में दो बार कजा हो रही है ना तो दैट मीन्स इज समथिंग सीरियसली, सही है। तो ये बुखार है, ये इंडिकेशन है ऑफ समथिंग मच मोर सिवियर, सही है। तो ये है, और इसके लिए जो है वो अल्लाह ताला से तौबा करे, फौरन जो है वो माफी मांगे, आइंदा आइंदा उस गुनाह को ना करने का इरादा करे। और अगर खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा ऐसा गुनाह कर रही हूँ कि जिसकी वजह से जो है ना मेरी फजर की नमाज कजा हो रही है, तो फिर शेख से पूछे, शेख को बताए, क्योंकि शेख का यही काम है कि जिस चीज का इल्म हमारे पास नहीं है वो शेख जो है वो इल्म हमें सिखाए, हमें बताए। फिर वो या तो उनको ऑलरेडी दिल में कोई बात ऐसी होगी जो आपके बारे में वो आपको बता सकते हैं कि भाई ये मसला है आपका, आप इससे तौबा करें, या ये कि वो फिर आपसे कुछ डायग्नोस्टिक क्वेश्चंस करेंगे, कुछ पूछेंगे कि भाई जरा बताएं कि आपका रोजो शब जो है वो आजकल कैसे गुजर रहे हैं, कोई नई चीज तो नहीं आपने शुरू कर दी है, ठीक है, कि जिसके अंदर गुनाह कबीरा हो रहा है आपसे और आप जो है वो उसका एहसास नहीं कर रही है। तो वो कुछ सवाल करेंगे, आपके जवाब होंगे, फिर उसके ऊपर फिर तो ये अल्लाह ताला फिर आपको ये सही तशखीस पहुंचा देंगे कि भाई ये रीजन है, ठीक है, कि जिसकी वजह से जो है ना वो मेरी जिंदगी में ऐसा गुनाह का मामला चल रहा है। दूसरे बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी ना करें, ना किसी और बुजुर्ग के मुरीदों से यूं कहे कि हमारा पीर तुम्हारे पीर से बढ़कर, ठीक है, ये हरगिज इस किस्म की बचकाना वाली है। बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ये मेरे अब्बू तुम्हारे अब्बू से ज्यादा अच्छे हैं, मेरी अम्मी तुम्हारी अम्मी से ज्यादा अच्छी हैं, या मेरी जो साइकिल है वो तुम्हारी साइकिल से ज्यादा अच्छी है, ये तो छोटे छोटे जिनकी अकल बहुत छोटी होती है ना वो इस किस्म की बातें करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो बड़े होने के बाद भी जिस्मानी तौर पर बड़े हो जाते हैं, लेकिन अकल जो है ना वो बड़ी नहीं हुई होती, तो वो भी फिर इसी किस्म की बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनको मना कर दिया कि हरगिज ऐसी बातें ना करें, ऐसी बातों से दिल में कदूरत पैदा होती है। अगर किसी पीर भाई पर पीर की तवज्जो ज्यादा हो, या उसको वजीफा व जिक्र से ज्यादा फायदा हासिल हो रहा हो, तो उस पर हसद ना करें, ठीक है। ये भी उम्मीद है कि आसानी से समझ में आ गई होगी बात, कि हसद तो है ना वो तो हरगिज किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब कुछ मैसेजेस जो है वो रह गए हैं, उनको एड्रेस करके फिर हम दूसरी क्लास शुरू करते हैं। कभी किसी को मामूलात के का फायदा समझाने के लिए अपने मामूलात का जिक्र कर देते हैं, मगर उसका असर ये होता है कि अपनी पाबंदी खत्म हो जाती है, उसका असर ये होता है कि अपनी पाबंदी खत्म हो जाती है। पहली बात तो ये कि मामूलात का जिक्र करने से अगले बंदे को फायदा हो, तो ये तो आजकल के हिसाब से कम जो है ना ये कोई सही आपकी समझ नहीं लग रही है, कि आप समझ रही हैं कि अपने मामूलात का जिक्र कर दे रहे जो है ना वो दूसरे बंदों को फायदा हो जाएगा, तो ये मामूलात वगैरह जो है ना वो आजकल नहीं समझ में आते, तो इस वजह से नहीं मामूलात का जिक्र क्यों करते हैं उनके साथ, ठीक है ना। दीन के दूसरे कामों का जिक्र कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई मेरी मेरे मैं इल्म का जिक्र करें लोगों से, इल्म का जिक्र करें, ठीक है, कि भाई मेरी समझ पहले गलत थी, मैं ये बात समझती थी, लेकिन मुझे दलील के साथ अब ये बात समझ में आ गई कि वो चीज जो है ना वो गलत है। अब मैंने उसके उस अमल की जो है ना वो इसलाह या तो कर ली है या मैं उसकी कोशिश में लग गई, ठीक है ना। ये है दूसरों को बताने वाली बात, सही है, ये है दूसरों को बताने वाली बात। और ये जो है ना वो टेंजिबल बात, ये समझते हैं ना, टेंजिबल, जिसको जरा आप आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं और आसानी से उसको जो है ना वो आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो मामूलात वाली बात है ना कि मुझे मामूलात से फायदा हो रहा है तो आप भी करें तो आपको भी फायदा होगा, नहीं, इसकी वजह ये है कि ये टेंजिबल चीज नहीं है। हो सकता है आप जिसको फायदा समझ रही हैं वो असल में फायदा है भी नहीं, आपने अपने गुमान में जो है वो अपने मामूलात से अपने आप को, कोई आपको भी आंसू आंसू आने शुरू हो गए या जो है वो कोई पता नहीं आगे की बातें समझ में आनी शुरू हो गई या कुछ इस किस्म की आपको कैफियात मिल गई, अब आप समझेंगे ये आपको बड़ा फायदा हो रहा है, हालांकि ये कोई फायदे की दलील थी ही नहीं। अब जिस आप फायदे के बारे में गलत फहमी में मुबतला है, अब आप अगले बंदे को भी जो है वो गलत फहमी में मुबतला कर रही है, ठीक है, तो ये सब करें ही नहीं ना, ठीक है ना। यानी आप तो करिए ना कि हमारी पाबंदी खत्म हो जाती है, तो वो शायद इसी वजह से भी खत्म हो जाती होगी कि आप एक गलत बात जो है ना वो अगले बंदे को बताने की कोशिश कर रही है जो कि आपको नहीं बताना चाहिए। पूछ रही थी ना, आप तो पूछती रहती है जिन्हों को ये बात क्यों नहीं पूछी थी किसी को मामूलात बताने से पहले, ठीक है, नहीं बताना चाहिए। इल्म का बताएं, शरीयत का बताएं, ठीक है ना, समझ का बताएं, ये क्यों नहीं बताते, ये तो बहुत बड़ा मसला है। हम ये तो इसके ऊपर रोना रो रहे हैं, हमें खुद टाइम नहीं मिल रहा लेकिन जो है वो सुनने वाले भी ये काम नहीं कर रहे। भाई जो गलत चीज़ आपको समझ में आई है वो दीन पे लेकर के आए ना लोगों को, दीन पे लेकर के आए, तसव्वुफ पे लेकर के मत आए लोगों को, दीन पे लेकर के आए, जिक्र वजीफे के ऊपर लेकर के आने की कोई जरूरत नहीं है, शरीयत पे लेकर के आने की जरूरत है, ठीक है, शरीयत पे लेकर के आए, अपने आप को भी लेकर के आए, दूसरों को भी लेकर के। आपने बताया था कि कभी बस्त कभी कब्ज की हालत होती है, वैसी ही कैफियत हो जाती चलता रहता है। तो फिर क्या नियत करनी चाहिए मुराकबा करने से या जिक्र करने पर, क्या नियत होनी चाहिए? हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने क्या बताया, जिक्र अस्कार करने पर मुराकबा करने के ऊपर क्या नियत होनी चाहिए, ठीक ना, क्या फरमा रहे हैं हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, शरीयत की पाबंदी, ठीक है, कि मैं शरीयत के अहकामात को पूरा करने वाली बन जाऊं और गुनाहों को छोड़ने वाली बन जाऊं, ये नियत होनी चाहिए। इस नियत से जिक्र करना है, इस नियत से मुराकबा करना, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर दो दर्जे हैं, शरीयत के अहकाम को पूरा करना और गुनाहों से बचना, इसके अंदर दो लेवल्स हैं या दो दर्जे हैं। एक दर्जा है करहन, ठीक है, करहन का मतलब जो होता है मारे बांधे, जिसको कहते हैं ना उर्दू में मारे बांधे, यानी जी नहीं चाह रहा नमाज पढ़ने का लेकिन पढ़ना है भाई, नमाज पढ़े बगैर तो तसव्वुर ही नहीं, अल्लाह की खातिर अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे मुझसे, ये कैसे कि मैं नमाज ना पढ़ूं, ठीक है ना, तो जी नहीं चाह रहा, बहुत रुकावटें आ रही हैं और नहीं, लेकिन पढ़ना है, ठीक है ना। झूठ, ये कैसे हो सकता है कि मैं अल्लाह ताला का हक मार दूं, अल्लाह ताला ने अगर मेरा हक मार दिया तो मैं किधर जाऊंगी, ठीक है ना, यानी खौफ से अपने आप को लगा करके कि हाँ मैंने झूठ नहीं बोलना है, मैंने सच बोलना है, क्योंकि सच बोलना अल्लाह ताला का हक है मेरे ऊपर और झूठ बोलना अल्लाह ताला के हक की ना की खिलाफ वर्जी है, ठीक है, तो इसको कहते हैं करहन, शरीयत की पाबंदी का ये पहला दर्जा नसीब हो जाए, ठीक है ना, जिक्र मुराकबे की नियत किया कि मुझे ये पहला दर्जा नसीब हो जाए। फिर उसके बाद दूसरा दर्जा, दूसरे दर्जे का मतलब होता है तवअन, ठीक है ना, यानी अताअत के साथ, ठीक है, यानी चाहत के साथ, शौक के साथ, रगबत के साथ शरीयत के अहकाम पे अमल करना शुरू हो जाऊं। और यही चीज अगर मजीद खोली जाए तो जो गुनाह है, जो नाफरमानी के काम है, उनके लिए दिल में नफरत पैदा हो जाए, नफरत पैदा हो जाए, घिन आनी शुरू हो जाए मुझे गुनाहों से, ठीक है ना, ये अगला दर्जा है। तो ये दो दर्जे जो है ना इनको पाना, ये नियत होनी चाहिए और यही सही नियत है और कोई नियत सही नहीं, यही सही नियत है, ठीक है। लेकिन दो दर्जों में इंसान को मिलती है, तो इंसान पहला दर्जा तो पाए ना और फिर उसके बाद दूसरे दर्जे की भी मेहनत करे, ठीक है। चले इसके बाद जो है वो मुरीद बल्कि हर मुसलमान की रोजमर्रा जिंदगी के आदाब, तो ये अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अगर फिर से। तो यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं, 2-4 मिनट की ब्रेक ले देते हैं।